तो इस और कोई ऐसे सवालात हो तो आप जो भी आपके करीब आलिम दीन को इस विरासत का इल्म जानने वाले कोई हो तो उनसे आप रुजू करें। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि ये तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, हदें हैं। अल्लाह ताला ने ये बाउंड्रीज रखी हैं, डोंट क्रॉस दोज बाउंड्रीज। क्या होगा अगर क्रॉस करेंगे? वो भी पता चल जाएगा। और अगर आप इन बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे और अल्लाह का ये हुक्म मानेंगे, देखें इतनी बड़ी इसके बारे में वईद है ना, ये छोटी बातें नहीं है, ये मामूली बातें नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे किसी को विरासत के पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। कोई कह के तो देखे कि विरासत बांटी जाए, कोई इस चीज तरफ तवज्जो तो करा के देखे, सब उसके दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, अपने बहन भाई दुश्मन होके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे देखा इसकी बीवी ने सिखाया इसको, लड़की है तो कहेंगे देखा इसके शौहर ने इसको कहा होगा, वो इसको सताता होगा। तो देखें ये तो वो है जो हदूद कही गई, और अल्लाह को पता है कि यहां पे लोग डंडी मारते हैं। तो फरमाया व मैं यूते अल्लाह व रसूला युदखिलहु जन्नतिन तजरी मिन तहतिहा अलनहारु खालिदीन फीहा। जो इताअत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की, किस चीज में इताअत की बात आ रही है? ये हदूद में, ये हदूद के ये कवानीन, किसका कितना शेयर बनता है, किसको कितना मिलना चाहिए, और ये भी के वसीयत में कितना क्या जो उसने कहा है उसके अंदर, और जो कर्ज है उसके बारे में, ये सब हदें हैं। जो अल्लाह की हदों को इताअत करता है, जो इनको मानता है, अल्लाह उसको दाखिल करेगा जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, इसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। दालिकल फौजुल आजीम, ये है बड़ी कामयाबी, ये है बड़ी कामयाबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां तक कि वसीयत में किसी को जरर पहुंचाना कबीरा गुनाह है। फरमाया कि हर हकदार को उसका हक पहुंचा दिया जाए, हर हकदार को। ये वो मैटर्स हैं जो इंसानी हकूक, इंसानों से मुतालिक हकूक हैं, और इंसानों से मुतालिक हकूक के बारे में अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। क्योंकि देखें आगे आ रहा है वह मई यासिल्लाह व रसूलहू, और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की और रसूल की। नाफरमानी किस में? यही जो जो बातें आ रही हैं इसके अंदर, जो नाफरमानी करेगा, क्योंकि ये अल्लाह की हदें हैं, इनको जो तोड़ेगा, वह यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हदों को तोड़ेगा, युदखिलहू नारन खालिदन फीहा, वो आग में दाखिल होगा जिसमें हमेशा रहने वाला है। अब मुझे बताएं किधर गया उसकी नमाजें, उसके हज, उसके उम्रे, उसकी ज़कातें, उसके सदका खैरात, उसके लोगों को पूछना अगर विरासत में डंडी मारती। खालिदन फीहा, हमेशा रहने वाला है उसमें, वो तो बर्बाद हो गया। क्या देखते हैं हम कि लोग बड़ा ही चैरिटी वर्क करते हैं, बड़ा ही वो मतलब हज उम्रों पे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो उन्होंने बहनों के हक मारे होते हैं, और कह देते हैं नहीं बहनों ने खुद ही माफ कर दिया। वो क्या गरीब कहेगी जब वो कहेंगे बस आप बस हमारा माफ कर दें, हम क्या करें, और फिर ट्रकों के ट्रक भर के जहेज दे देंगे, और उसके बाद कहेंगे बाद में विरासत में जिसे जो नहीं देना, नीयत ये होती है ना कि विरासत में से नहीं देना, या माँ बाप कहते हैं भाइयों भाइयों ने देना ही नहीं बाद में इनको, तो इसलिए अभी इनको जहेज में दे दो। जो जिंदगी में वालदेन दें वो तो एक हिबा है, वो तो तोहफा है। क्या लड़कों की शादियां नहीं होती? उनकी भी तो शादी होती है, उस पर भी तो स्पेंडिंग होती है, लेकिन कहेंगे कि लड़की की शादी पे सब कुछ दे दिया, इसकी तालीम दिला दी, इसकी शादी कर दी, बस खत्म। ये है हमारी जिहालत आज, कि हम वो ही हिंदुआना चीजें जो है ना वो हमारे अंदर आ गई। हिंदुओं के अंदर नहीं विरासत में कोई होता, बस जहेज ही दे दिया खत्म, वो ही हमारे अंदर आज। कहाँ पे कौन सी बहनों को हिस्से दिए जाते हैं, या कौन सी बेटियों को हिस्से दिए जाते हैं? कोई भी। और अक्सर जगहों पे आप देखेंगे माफ करा दिया जाता, बस माफ कर दिया। नहीं उसने माफ ही कर दिया तो फिर क्या, माफ कराया ना उसने, चाहिए कि उसको दो पहले, उसके बाद कहो कि अब मुझे वापस दे दो, देखो फिर कितनी दफा देती है वो। दिया है नहीं तो कह देना माफ कर दी माफ कर दी, जब दिया ही नहीं तो फिर माफी की क्या बात है? आप पहले दे के देखो उसको, फिर उससे मांगो कि अब मुझे दे दे। एक तो हिस्सा खा जाते हैं धड़ल्ले से, फिर कहते भी हैं माफी कर दिया उसने। तो हम तो देखें, वैसे अगर हमारे बहन भाई भी हो तो बहन भाइयों के भी पर्स से, उनके वॉलेट से हम पैसे नहीं निकाल के खा लेते। लेकिन आप ये देख लें, यहां पे बगैर उनकी इजाजत के उनका हिस्सा खाए चले जाते और कोई एहसास नहीं, बस उनको जरूरत ही नहीं, जरूरत है या नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो अमीर है उनको दिया जाए, उनको ना दिया जाए, जो फकीरों को बस दिया जाए, जो बहन भाई गरीब है उनको मिलेगा, जो बेटे बेटियां गरीब है उनको मिलेगा, नहीं, सबका हिस्सा बताया गया। हाँ अगर कोई वो अपनी खुशी से कहे उनको मिल गया, वो कहते नहीं हमने इसको देना है, तो दे दे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो दादा दादी है वो कहते हैं हमने देना है इनको, हम दे दे। कोई भाई है वो कहते हैं हमने अपनी बहन को देना ही है, या बहनें हैं वो कहती हैं नहीं हमारे भाइयों को जरूरत है हमने उनको देना है, तो दे देंगे। वो तो उनका फिर माल है, जिसपे मर्जी खर्च कर। वैसे नहीं अपनी जिंदगी में हम लोगों को देते रहते, जिसको जितना मर्जी हमारा दिल करता देते हैं, तोहफे भी देते हैं, कोई को और भी खर्च करते हैं, तो देते रहे। लेकिन ये नहीं कर सकते, कितना दिया ना कुछ है और कह दिया माफ हो गया। और आप देखिए यहां पर फरमाया खालिदन। अच्छा आप देख लें, जन्नत वालों के लिए आया खालिदीना, जहन्नुम वालों के लिए आया खालिदन, ये क्यों ऐसे है? हाँ वो जमा में आया हमेशा रहने वाले, और ये वाहिद में आया, वजह तो कुछ तो होगी ना। देखिए एक तो बात ये है कि वहां जो जन्नत के अंदर है ना, सारे मजलिसे भी होंगी, बैठेंगे भी, कुछ गप्पियां भी होंगी, इकट्ठे भी होंगे, देखेंगे भी एक दूसरे को, मिलेंगे भी एक दूसरे। जहन्नुम वाले तन्हा होंगे, नंबर वन बात यह है कि वो ऐसे चैम्बर्स में होंगे जहां पे उनको अकेले ही बांधा गया हो, आग होगी। और दूसरे, जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तो कोई और ना उसके पास आता है, ना वो कोई पूछने वाला होगा, और कोई पूछने वाला होता भी तो इंसान अपनी तकलीफ में अकेला ही होता है, कोई उसकी तकलीफ शेयर नहीं कर सकता। जो उसके ऊपर गुजर रही होती है वो उसमें तन्हाई होता है। और ये इतनी खौफनाक बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बारे में कि एक आदमी 70 साल तक नेकी के अमल करता रहता है, 70 ईयर्स नेकी कर रहा है, नमाजें, तहज्जुदें, इबादतें हो रही हैं, सदके खैरात हो रहे हैं, मस्जिदों में काम हो रहा है, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, फिर वसीयत के वक्त जुल्म करता है, वसीयत के वक्त जुल्म करता है, कह जाता है मेरे बाद देखो ये ना करना, मेरे बाद देखो वो ना करना, मेरे बाद देखो इसके साथ ना ताल्लुक रखना, तो इसका खात्मा बुरे अमल पे होता है और वो जहन्नमी बन जाता है। और एक शख्स बुराई का अमल 70 साल तक करता रहता है, लेकिन अपनी वसीयत में अदल करता है और खात्मा उसका बेहतर हो जाता है, तो जन्नत में दाखिल हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, यानी इंसान का अमल जो है ना उसके खवातीम पे डिपेंड करता है कि इंसान का खात्मा किस पे होता है, एंडिंग किस पे होती है। एंडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे एंडिंग ही खराब कर दी। अब सारा कुछ खाना बनाती है, आखिर में आके आपने उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज कर दी कि वो नमक ही सारा फेंक दिया, तो क्या उसका हाल हो जाएगा? आखिर में आपने उसका कोई बेड़ा गर्क कर दिया तो क्या होगा? तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द या औरत अल्लाह ताला की इताअत में 60 साल तक लगे रहते हैं, फिर मौत के बाद वसीयत में कमी बेशी करते हैं, तो उनके लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। तो जो इंसान इन अहकामात को मान लेगा, इनमें कोई हीले एक्सक्यूजेस नहीं निकालेगा, वारिसों की कमी बेशी नहीं करेगा, तो वो जन्नतों के अंदर होगा। और जो इंसान, देखो क्या इंसान एक माल की खातिर, 4 पैसों की खातिर, जो वारसों के पास भी हमेशा थोड़ी रह जाने, इनके पर भी नहीं उसको मिल जाए, नहीं ये मेरा बड़ा लाडला है, नहीं ये छोटा है, इससे बड़ी मुझे मोहब्बत है, नहीं बेटों से मोहब्बत ज्यादा है, बेटियां तो चलो अपने घर की हो गई, वो तो अपने हस्बैंड के पास चली गई, हम उनसे नहीं कुछ। जो आप खुद सोचो, जिन वारसों के पास छोड़ के जाओगे इनके पास की हमेशा रह जाना, क्या हमेशा रहेगा? नहीं। तो फिर क्यों ऐसी डंडियां मार के अपनी आखिरत खराब करते हो? क्यों इसके अंदर हेरा फेरी करते हो अल्लाह के अहकाम में? जो जिसका हक है दे दो, चाहे आपको वो पसंद है नहीं पसंद, तो हम सोचते हैं इसको ज्यादा दे देंगे ना, पता नहीं सारी जिंदगी इसको यही काम आता रहेगा, वो भी खत्म हो जाना है। और अगर हमने इसको नहीं देना कि इससे छीन के पता नहीं हमने इसको कितना महरूम कर देना, فرمایا والا ہو عذاب مہین، اہانت والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے. سوچیں کہ رسوائی والا عذاب کیا مطلب ہے، کہ جسمانی عذاب تو ہوگا، رسوائی بھی ہوگی وہاں پہ. میں ایسے سورہ اعراف پڑھ رہی تھی تو ایک آیت کے اوپر میں رک گئی، پتہ نہیں ایسے اس نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ کیا ہوتی ہے رسوائی. ایسے ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں ایکچولی میں ایسے ہی پڑھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 44 ہے شاید، کہ اصحاب بات ہو رہی تھی کہ ونادا اصحاب الجنتی اصحاب الناری، جنت والے جو ہوں گے وہ جہنم والوں سے پوچھیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمیں تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق ہوا، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے ساتھ جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ حق ہوا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا، واقعی اللہ نے کہا تھا ان ان چیزوں کے بدلہ جہنم ہے، تو ہمارے ساتھ بھی جو وعدہ ہوا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی پورا ہوا. تو اب آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آگے کیا آئے گا. تو آگے جب پڑھا، فاذن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین، تو ایک ندا دینے والا اعلان کرے گا، ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا، لعنت اللہ کی ظالموں پہ. اب ایک دم آپ وہ ہو جاتے ہیں نا کہ ہائے یہ کیسی بات. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو ہمیں دنیا میں کوئی نہ ایسے لعنت ملامت کر لینا، لعنت ہے تیرے کو پر، لعنت ایسے تو انسان کے پر کیا گزرتی ہے، سارا دن خراب ہو جائے گا، سارا دل خراب ہو جائے گا، انسان دکھی رہتا ہے، اس نے میرے سے کیسی بات کی، کوئی گالم گلوچ کر دے تو کتنا دل خراب ہوتا ہے، کتنا انسان سائیکولوجیکلی ہرٹ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ فزیکل ہرٹ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے نا ذلیل کر دینے والا عذاب، تو وہ جو ایک بےزتی کی فیلنگ ہے، وہ جو ایک رسوائی ہے، وہ جو ایک سائیکولوجیکل ٹارچر کی کیفیت ہوگی، وہ کتنی مشکل ہوگی انسان کے لیے سہن. یہاں پہ سوکھی روٹی کھانی پڑ جائے تو انسان کے آنسو نکل آتے ہیں، ہائے میں نے تو کبھی سوکھی روٹی نہیں کھائی تھی، آج میرے اوپر یہ نوبت آ گئی. حالانکہ اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ کرس کیا جا رہا ہے دن رات، جہاں پہ ہر وقت کی ایک ذلت ہے، ذلت بھی انسان کہتا ہے نا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے کہتے ہیں نا، تو وہاں پہ صرف ٹارچر نہیں ہوگا، فزیکل ٹارچر نہیں ہوگا، ذلت ہوگی. ذلت انسان سے نہیں برداشت ہوتی، کہتا ہے مر جاؤں اس ذلت سے. تو یہ چھوٹی باتیں ہیں بتائیں بھلا. اور پھر اس کے بعد آپ سوچیں، اس سارے کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں کتنی اویئرنیس ہے اس کی، کتنی اویئرنیس ہے. آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، چلیں باہر چھوڑیں، آپ اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں کتنی اویئرنیس ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی کے خاندان ہی پورے پورے دیندار ہوں تو بات ہے، ورنہ کیا ہے. یہ ہیں وہ حقوق ہے کہ جہاں پہ سوئی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز تک، کثر اور قل تک بھی آپ کو بتایا گیا کہ یا قلیل میں بھی سوال ہے، ادھر سے ادھر ذرا بھی چیز نہ ہو، اس جس نہ اس میں کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ وہ جو ایک شخص تھا جو جنگ کے اندر شہید ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ مبارک ہو اس کو شہادت، اس کے لیے تو جنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو ایک چادر اس نے چرائی تھی وہ اس کے اوپر آگ بن کے بھڑک رہی ہے. خیانت ہو گئی نا، تو سب سے زیادہ تو خیانتیں وراثتوں میں ہوتی ہیں، اور ہم دودھ دھلے بنے بیٹھے رہتے ہیں، ہم نیکی بہت ہیں، جب وراثتوں میں چاہے کتنوں کے حق کھائیں، اور پھر وہ خود کو نیک سمجھتے ہیں، خاندانوں کے خاندان نیک ہیں، نیکی کی دھوم مچی ہوئی ہے، یہ مسجدیں بڑے بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، اسپتالوں کو دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بہت نیک ہے، اور دیکھا جائے تو پیچھے وراثت میں حق مارے ہیں، وراثت کی تقسیم صحیح نہیں کی، حق نہیں میں مارے ہوں گے، تقسیم صحیح نہیں کی، جس کو جتنا ملنا چاہیے اتنا دیا ہی نہیں، جس کا زور چلتا ہے وہ آج وہی والا حال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جیسے اس زمانوں کے اندر ہوتا تھا. میں نے کہا نا جہلیت کا زمانہ بھی ختم نہیں ہوا، ہمارے پاس تو اسلام آیا ہی نہیں ہے، ہم اسی پری اسلامک دور کے اندر ہی ابھی تک رہ رہے ہیں. جیسے اس کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جس کا زور ہوتا تھا وہ سب پہ قبضہ کر لیتا تھا، اسی طرح آج بھی تو ہے، جس کا زور ہوتا ہے وہ ہی قبضہ کر لیتا، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس پاور ہے، وہ دیکھو سارے अगर भाई है तो जिस भाई का ज्यादा जोर है उसके बेटे हैं वो आगे बढ़ के सबको दबा लेता है, वो थोड़ा अमीर है, वो थोड़ा वो है, वो गरीबों वालों को तो चुप करा के बिठा देता है, तुमको जितना मैं दूंगा बस वही है तुम्हारा, इससे ज्यादा नहीं है। इस तरह से तो करके गसब किए जाते हैं हक। तो अगर एक बालिश्त जमीन भी किसी ने किसी की हत्या ली हुई, क्या हदीस पढ़ी थी जी, एक बालिश्त, यहां पे तो जमीनों की जमीनें हजम की होती है ना, कई कई अकाउंट, कई कई इन्वेस्टमेंट्स, कई कई प्लॉट हजम कर दिए गए होते हैं, एक बालिश्त भी किसी ने किसी की, उसका हक नहीं बनता था ना, हक ले ली है तो 7 जमीनों का तौक उसके गले के अंदर डाला जाएगा, 7 जमीनों का कैसे उठाएगा वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह इस ज्यादती से अल्लाह महफूज रखे। क्या 4 दिन की जिंदगी इंसान क्या खा लेगा और क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा, अगर वो इधर उधर से स्नैच करके, इधर उधर से छीना झपटी करके और अपना बना ले, क्या कितना छोड़ जाओगे अपनी औलाद के लिए। देखा गया है कि लोग अपनी इधर उधर से छीन लेते हैं और फिर अपने पास रखते हैं, उनकी औलाद भी उनकी नहीं बनती कल को, अरे हराम औलाद को भी दिया होगा तो आगे कैसे बनेगी वो उनकी, फिर रोते फिरते। कम से कम हम जो ये पढ़ रहे हैं, हम लोग अपनी जिंदगियों के अंदर इसको अप्लाई कर लें, किसी और को तो छोड़ें, जितना तक आप फैला सकते हैं इन बातों को फैलाएं कि मैंने ये पढ़ लिया, लेकिन कम से कम अपनी अपनी घरों के अंदर तो सब इसको अप्लाई करें, जहां तक बस चलता है वहां तक अप्लाई करा के कराएं, जहां पे बस नहीं है वहां पे ठीक है, फिर अल्लाह को पता है कि किसका कितना जोर है, किसी को बता के कह सकते हैं, बता के कहें, कहीं कई जगह पे आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो बुरा मान जाएंगे, तो कोई लेक्चर उनको भेज दें, आजकल तो व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको कोई वो चीज आगे उनको फॉरवर्ड कर दें, लेकिन अवेयरनेस लेकर आए, जो पढ़ने वाले उनका ये काम है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, सिर्फ पढ़ के ना बंद कर दिया करें नोट्स को। अच्छा आगे अब देखते हैं, यहां तक हमारा विरासत का मौजू मुकम्मल हुआ, आगे देखते हैं औरतों के और क्या हकूक हैं, ठीक है। अच्छा, واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم। अच्छा एक बात, सॉरी एक बात रह गई, जो ये उन्होंने सवाल पूछा हुआ है कि अगर अपनी जिंदगी में देना चाहें, जिंदगी में दे लें आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो हिबा होगा, उस पे विरासत के कवानीन नहीं लगेंगे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी औलाद के अंदर बराबरी करो, अगर मैं किसी को देता ज्यादा तो बेटियों को ज्यादा देता, तो ये लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया, यानी अपनी पसंद या का ये पसंद से देने का हक तो अल्लाह ने अपने रसूल को भी नहीं दिया, ठीक है। तो जिंदगी में करना चाहते हैं मगर उसको विरासत मत कहें, मैं अपनी जिंदगी में अपनी विरासत देना चाहती हूँ, ये विरासत नहीं है, विरासत तो होती मरने के बाद है, कहें मैं अपनी जिंदगी में अपना जो भी बिलोंगिंग है वो अपने बांट देना चाहती तो बांट दे, कोई मसला नहीं, लेकिन सबको फिर बराबर मिलेगा, फिर ये वाले हिस्से सिर्फ विरासत वाले हैं, ये वाला कानून आप वहां पे नहीं चलाएंगे। वल्लाती यातीन अल फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशिदु अलैहिन्न 4 मिनकुम। वो औरतें जो इर्तकाब करें बुराई का, बेहयाई का, फाहिशा का मतलब यहाँ पे है जिना, ठीक है। तो या अल्लाह ताला माफ करे, औरत का औरत से कोई जिंसी ताल्लुक, तो ये सारा इसके अंदर ही आ जाता है, फहाशी के अंदर, बेहयाई, खुली बेहयाई, तो उसके अंदर क्या है, फस्तशीदु अलैहिन 4 मिनकुम, तो 4 गवाह लेकर आओ इसके ऊपर। देखिए यहां तक आयत जो है ना, ये तो इसका हुक्म अभी भी मौजूद है, इससे आगे जो है वो मनसूख हो चुकी है। यहां तक क्या है कि अगर कोई बंदा ये अपना मुंह खोलता है ना कि फलां औरत बदकार है, फलां औरत ऐसी है, ये फलां है, तो याद रखिए उसको 4 गवाह लाने पड़ेंगे, अगर वो नहीं ला सकता 4 गवाह, या 3 ले आया है, 4 नहीं बने, तो फिर उसको हद्दे कजफ लगाई जाएगी, यानी 80 कोड़े, 80 कोड़े उसको लगाए जाएंगे, 80 लैशेस। क्यों, इसने क्यों इल्जाम लगाया किसी और पे, इससे पता चलता है कि इस्लाम चाहता है कि ऐसी बातें मुआशरे के अंदर गॉसिप्स ना बने, फलाने का पता ना वो तो उसके साथ है, फलां उसके साथ है, फलां का उसके साथ ताल्लुक है, ऐसे आप मुंह से बातें नहीं कर सकते, किसी के ऊपर बदकारी का इल्जाम नहीं लगा सकते अनलेस आप चार गवाह लाए। बैठे बैठे आजकल तो शौक ही है, जिसको मर्जी जिसके साथ कर दिया, हम तो उसको उसके घर जाते हुए बड़ा देखा है, वो आदमी इनके घर में बड़ा आता है, ये इनके घर में तो ऐसे होता है ऐसे होता है। ये बोलने से पहले या तो गवाह लेकर आओ या फिर खामोश रहो, ठीक है? और गवाह भी एक नहीं चार, और चार गवाह ये मिलना कितना मुश्किल काम है कि चार गवाहों ने एक ऐसा अमल देखा हो, इसका मतलब है फिर खामोश रहो। लेकिन हम जुबानें कितनी खोलते हैं इन मामला इससे जैसे कोई मसला ही नहीं। और अगर इस्लामी माशरा हो तो हद लगेगी, और अगर आज इस्लामी माशरा नहीं है और हद किसी को नहीं लगती तो अल्लाह के यहां तो पूछ होगी ना। भोली भाली औरतों के ऊपर बोहतान लगाना कबीरा गुनाह में से एक गुनाह है, लेकिन आराम से बोल देते। तो ऐसे लोगों को जो बेहयाई की बात को किसी के ऊपर कहें कि ऐसा है, बोहतान लगाएं, तो वो चार गवाह लेकर आए। मगर एक बात याद रखिए, इतने बाज लोगों को ना इल्म होता है ना उन्होंने कभी कुरान सीखा समझा होता है, लेकिन बस इस्लाम के वैसे पीछे पड़े होते हैं कि कोई ना कोई हमने, वो फिर आगे से उठ के कहते हैं लो अगर एक औरत के साथ रेप हो जाए तो क्या वो चार गवाह लेकर आती रहे? तो आपको ये पर पता होना चाहिए कि ये रेप विक्टिम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये एक बदकारी औरत की बात हो रही जो बदकारी फहाशी के अंदर कोई इर्तकाब करती है। तो उन औरतों को भी अल्लाह ताला ने कहा इनकी भी बातें ना करते फिरो। रेप वाली तो खुद विक्टिम है, खुद मुद्दा ही है, वो तो खुद आगे कहेगी कि मेरे साथ ऐसी बात हुई है, वो चार गवाह थोड़ी लेने चली जाएगी। हाँ वो अब अदालत इसके अंदर सारे सबूत और सारी चीजें देखेगी कि वाकई इसके साथ हुआ भी है या ये ऐसे ही किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को फंसाने के लिए तो नहीं कह रही, ये तो फिर अदालत देखेगी। मगर अदालत को ये नहीं कहेगी जाओ कि लेकर आओ चार गवाह। लेकिन ऐसा मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि कई लोगों को इस्लाम का नहीं पता था, तो देख कैसे अब्यूज करते हैं इन आयतों को, कैसे वो अल्लाह के कुरान के ऊपर ऐसी बातें लगाते। अतकुलुना अल्लाह ही माला तालमून, तुम अल्लाह के ऊपर वो बातें लगाते, हराम किया अल्लाह ने ये कि वो जो तुम्हें पता ही नहीं है वो अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा दी कि देख लो बेचारी रेप विक्टिम के लिए तो इस्लाम के तरीके है, ऐसा कुछ नहीं है। इन शहीदों फिर अगर वो गवाही दे दे तो रोक लो उनको, फिल बुयूती हत्ता यतवफ्फाहुन्नल मौत, तो उनको घरों के अंदर कैद रखो, समझ लो कि ऐसे कि लाइफ इन प्रिजन यानी उम्र कैद। उम्र कैद तो फिर भी उसकी एक लिमिट होती है, लेकिन जब तक वो मरे नहीं वो घरों के अंदर उनको जेल कर दो, समझ लो उनको घर ही उनकी जेल बना दो। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे, अल्लाह उनके लिए कोई और हुक्म दे दे। तो ये वाला मैंने आपको पोर्शन बताया कि पहले ये सजा हुआ करती थी ऐसी औरतों की, लेकिन उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन वही नाजिल हुई तो आपने उसके बाद फरमाया मुझसे अल्लाह का हुक्म ले लो, अल्लाह ताला ने स्याहकार औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया, अगर शादीशुदा औरत या शादीशुदा मर्द इस जुर्म को करेगा तो उसको संसार कर दिया जाएगा, और अगर गैर शादीशुदा करेगा तो 100 कूड़े और 1 साल की जिलावत नहीं होगी, ठीक है? तो और एक जगह पे आता है कि शादीशुदा को भी 100 कोड़े और पत्थरों से मार डालना, लेकिन जमहूर यानी मेजोरिटी का यही है कि नहीं उसको सिर्फ कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, शादीशुदा को सिर्फ रजम ही कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के मार देंगे। तो ये बाद में अल्लाह ने फिर एक रास्ता उनके लिए निकाल दिया, मगर पहले क्या था, पहले ये वाली सजा थी कि अगर गवाह मिल जाते हैं, चार गवाहों ने ऐसा काम दे दिया, सोचो ही फिर तो क्या हाल होगा उस माशरे का या उस औरत का जो चार के सामने ऐसा काम कर रही होगी, अगर मिल जाते हैं तो फिर उसके लिए ये सजा। वल्लदानियातियानिहा, और अगर दो आए इसको यानी किसको, इसी फहाशी को, दो करें मिनकुम तुम में से यानी मुसलमानों में से, फआदूहुमा तो अजियत दो उनको। दो आए का मतलब क्या है? अब उलमा इसमें कहते हैं एक आदमी और एक औरत करें यानी जिना करें, या दो औरतें यानी होमोसेक्सुअल हो, या दो मर्द हो गे हो, वो भी इसके अंदर आ गए, यानी हम जिन्स परस्ती का कोई केस आ जाए या फिर शादी ये जो मर्द और औरत जिना कर रहे हैं तो वो ऐसे लोग आए तो उनको अजियत दो। अजियत दो का मतलब क्या है कि ऐसे आदमी या तो मार कुटाई करो, या उनको जहनी तौर पे उनको गालम गलोच, या उनको बुरा भला, या उनको लानत मलामत करना, या उनको ऐसी बातें कहना कि जिससे वो के बाज आ जाएं वो इससे, ठीक है, तो उनको अजियत दें। ये आयत बाज तो कहते हैं कि उन्हीं के लिए है जो ये वाला अमल करते हैं जो कौमे लूत का अमल था, ठीक है। बस कहते हैं कि ये उन मुजाहिद रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये उनके बारे में ही उतरी है, ठीक है। अब उनके बारे में यानी ये सजा उतरी, ये पहले थी कि उनको शर्म दिलाओ, उनको गैरत दिलाओ, उनको बुरा भला कहो, उनको जूतियां लगाओ, उनको इस तरह करो कि ये वो बाज आए। लेकिन उसके बाद फिर ऐसे जो के होमोसेक्सुअल्स हों, गे या लेस्बियंस हों, उनके लिए हदीस के अंदर एक और सजा आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे तुम कौमे लूत वाला अमल करते हुए देखो तो फाइल और मफ़ऊल दोनों को कत्ल कर डालो, यानी जो करने वाला है और जो कराने वाला, दोनों को कत्ल कर डालो। यानी दोनों जाहिर है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उनको कत्ल कर दिया जाए, फिर इनकी सजा कत्ल हो गई। मगर इससे पहले क्या था कि उनको अजियत दो, फैंताबा व असला फारिद, अगर वो तौबा कर लें, वो अपनी इसलाह करें, ठीक हो जाएं, अपने अमल को सही कर लें, चेंज हो जाएं, तो फिर तुम उनको छोड़ दो। फारिदु अनहुमा, फिर बाद में ना उनको आर दिलाते रहो कि अच्छा तुम तो ऐसे थे ना, तुमने तो ये किया था ना। याद रखें, जब हद कायम हो जाए ना, फिर उसके बाद उस बंदे का वो नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैर शादीशुदा जिना करता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाए, उसके बाद नहीं उसको कहा जा सकता कि तुम तो देखा ये करते थे, तुम्हारा तो हमें पता है, फिर नहीं आप उसको कह सकते। फिर उसका, जिसको दुनिया में हद लग गई, उसका यहाँ पे ही अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, अब उसका गुनाह धुल गया। फिर तो अल्लाह ताला ने उसको, वो जो क्रिमिनल है उसको भी कितना एक यानी प्रोटेक्शन दी है कि ऐसा ना हो कि वो कभी उस चीज से निकल ही ना सके, क्योंकि अगर उसके ऊपर हद भी लग गई, उसके बाद भी लोग उसको वही कहते जा रहे हैं, तो वो कभी उससे निकल के एक पाक जिंदगी नहीं गुजार सकेगा। वो उसके ऊपर एक स्टिग्मा लगा देंगे। जैसे अब दुनिया के अंदर क्या होता है, अगर एक बंदे ने कुछ मसलन है चोरी कर ली, या कहीं जेल में गया, या कुछ ऐसा उसके साथ, तो आपको पता है सारी जिंदगी वो जहां जॉब के लिए अप्लाई करेगा, वीजे के लिए अप्लाई करेगा, किसी जगह पे किसी चीज के लिए भी वो अप्लाई करता है ना, तो उसमें वो पूछते हैं कि आपका क्या पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप जेल तो नहीं गए, आपको कोई सजा तो नहीं हुई, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया, आपके ऊपर कभी कोई केस तो नहीं हुआ। सारी जिंदगी वो उसमें लिखता रहता है, वो उसको हॉन्ट करती है, उसको छोड़ती नहीं है। ये दुनिया में देखें कैसा होता है। तो लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, जब उसको सजा मिल गई तो वो अब इसका पीछा छोड़ दो, अब उसने अपने आप को चेंज कर लिया, उसने अपनी इसलाह कर लिया, अब बस कर दो, अब उसको ऐसे ही समझो जैसे सोसाइटी के और लोग हैं। ये उसको हेल्प करेगा नॉर्मल जिंदगी गुजारने में, और अगर वो सारी जिंदगी उसी के अंदर हो रहेगा तो वो कैसे कैसे एक नॉर्मल इंसान की तरह रह सकता है। उसका तो बहुत चांस होगा वो वापस उसमें चले जाएगा, वो कहेगा ये तो दुनिया मुझे इसी के साथ जानती है, एक औरत के बदकारी का इल्जाम लग जाए तो वो उसके बाद फिर बस सारी जिंदगी उसको यही कहना, हमें तो पता है इसका, हमें तो पता है इसका, तो फिर मुझे बताएं वो कैसे कभी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है। कहती ठीक है, मुझे अगर बात समझते ही हैं तो फिर मैं यही करती रहती। इन्नल्लाह कहना तव्वाब रहीम, अल्लाह ताला तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसकी भी सजा इस्लाम ने बताई है कौमे लूत वाले अमल की, और हम आगे इंशाल्लाह बहुत दफा पढ़ेंगे भी। ये ऐसी चीज नहीं जो एक नेचुरल चीज है कि कोई बेचारे आए बॉर्न ही ऐसे हुए थे, अगर बॉर्न ऐसे होते तो उसकी सजा क्यों होती, बॉर्न की तो सजा नहीं होनी चाहिए ना फिर, अगर वो तो फिर उसका क्या कसूर है। तो दूसरी ये बात हमें पता चलती है कि इससे इसके सद्दे बाप के लिए भी इस्लाम कहता है हदीस में कि दो मर्द और दो औरतें एक चादर में ना सोएं, दो आदमी एक चादर में ना सोएं, इसी तरह दो लड़कियां हैं वो एक ही ब्लैंकेट है उसके अंदर सो रही हैं। नहीं, इनमें देखिए इसमें खराबी का चांस होता है। इसी तरह निकाह को आसान बनाना चाहिए ताकि ये फहाशी की चीजें खत्म हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने चार की इजाजत दे दी कि ठीक है तुम चार कर लो, लेकिन निकाह निकाह करो, जिना मत करो। और इसी वजह से एक बाउंड नहीं आदमी को किया कि बस तुमने इतना ही मेहर देना तो शादी हो सकती है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम मेहर दे के भी कर सकता है शादी। लेकिन जहां पे मेहर बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि अरब मुल्कों में कई जगह पे इतना मेहर है, किसी ने बताया मुझे कि 10,000 दिरहम से कम वो मेहर नहीं रखते। वहां पे औरतें कहती हैं कि हमने इतना ही लेना है, तो आदमियों के लिए शादियां मुश्किल हो जाती हैं। जब शादियां मुश्किल हो जाती हैं, उनकी जरूरतें भी उस मुताबिक हैं, फिर एक शादी करना मुश्किल है, एक से ज्यादा क्या करेंगे, तो फिर वो ये काम करते हैं कौमे लूत वाले। या जाहिर है मर्दों में हर वक्त रहना, औरतें तो पर्दे के अंदर है, औरत मिल भी नहीं रही। अब वो मर्दों की मजलिसों में रहते तो फिर वो ऐसे कामों में पड़ जाते। तो निकाह को आसान बनाना चाहिए, हमने इतना मुश्किल बनाया हुआ है, और जिना को आसान बनाया हुआ। जिना के लिए कोई मसला नहीं है, गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी रखो। अब मगरिबी मुल्कों में सब में देखें, आप शादी एक ही करनी है, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, वो औरत पे ज्यादती हो जाएगी। लेकिन गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी रख लो, जिना जितने मर्जी करो, उसके लिए खुली छुट्टी है। आप खुद सोचें कि जिना में औरत को इस्तेमाल किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, वो उसके साथ ज्यादती है या फिर आदमी शादी कर ले वो ज्यादती है? ये ज्यादती है उसके साथ अगर वो दूसरी शादी करता है या तीसरी करता है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما